valueless.
For the sake of the truth, the shakti will be watching this. जो किसी उज्र की वजह से रोजा नहीं रख सका, मतलब बीमारी, बुढ़ापा या सफर, सफर की हालत में रोजा रखने की पसंद है, लेकिन बाद में तो रखना जरूरी है। जो सफर में इजाजत है कि रखो या ना रखो, लेकिन बाद में उसको रखना जरूरी है। बीमारी और बुढ़ापे में बीमारी अगर ऐसी है कि बाद में बिल्कुल नहीं रख सकता, उसको गुंजाइश है, उसका फिदिया देते। लेकिन अगर बीमारी ऐसी है कि बाद में छोटे दिन में भी अगर रख सकता है कभी, जैसे कुछ महीने आते हैं ठंडी के मौसम में, छोटा दिन होता है बिल्कुल कम, उसमें भी अगर रखने की ताकत उसको आ जाएगी, उसको रोजा रखना पड़ेगा और उसका फिदिया बातिल हो जाएगा। ये नहीं कहेगा कि मैंने तो फिदिया दे दिया था और रोजा रखने की जरूरत नहीं, ये गलत नजरिया होता है आप लोगों का। कहते हैं वो फिदिया तो दे दिए, क्या रोजा रखने की जरूरत नहीं। रोजा रखने की कोई भी बीमारी में कोई आदमी रोजा नहीं रख सका, फिदिया दे दिया, फिर बीमारी से अच्छा हो गया या छोटे दिनों में रोजा रखने के काबिल हो गया, उसका फिदिया बातिल हो जाएगा और उसको रोजा रखना पड़ेगा। इसी तरह से बुढ़ापे की वजह से सख्त बुढ़ापा है, बिल्कुल रोजा नहीं रख सकता, हर वक्त दवाइयां चल गई हैं, ताकत भी नहीं है, उसकी वजह से रोजा नहीं रख सका, तो चाहे जिस सूरत में रोजा नहीं रखा, या कोई ऐसे ही जानबूझ कर रोजा नहीं रखा, ताकत रहने के बावजूद शरारत से, गलती से, तो सबकी तरफ से फिदिया हो सदका फित्र वाजिब है। ये नहीं कहा जाएगा कि जब रोजा ही नहीं रखा तो वो सदका फित्र क्या देना। एक सबब जो है वो पाया जाता है, फुकरा की सबरगिरी, फुकरा के लिए चीज का इंतजाम। तो चाहे भी किस सूरत में हो, इंसान उसका सदका फित्र देना जरूरी है। मुस्लिम बात यह गलत नजरिया मशहूर हो गया है कि हमारे घर मेहमान आया है तो उसका भी सदका फित्र हम ही को देना है। जब जो बीवी है आपकी मखसूस, उसका सदका फित्र नहीं है आपके ऊपर वाजिब, तो मेहमान के आने का जिसकी कफालत आपके जिम्मे थी। फिर सदका फित्र ऐसे अशखास की तरफ से भी देना जरूरी है जो रोजा उज्र की वजह से या बगैर किसी उज्र की वजह से नहीं रखते। और अगर कहा जाए तो बेहतर ये है कि सदके फित्र के जो निसाब है, जो देने के मिकदार है, अदना मिकदार तो हर कोई आदमी दे सकता है, चाहे रोजा रखा हो या न रखा हो, फकीर हो या मालदार हो, गेहूं का उसे तो हर कोई इंसान दे सकता है, उसकी कीमत ही क्या बनती है। आज के दौर में ऐसा कोई मुश्किल से शख्स मिलेगा जिसके पास 50 रुपए ना हो और वो अपने जान का सदका इस मुबारक में ना निकाल सके रमजान का रोजे का। सदका फित्र की मिकदार जो है, इसमें भी हमारे यहाँ बहुत ही गलत किस्म के नजरियात है। लोगों ने सिर्फ एक निसाब गेहूं को पकड़ रखा है, एक गेहूं की मिकदार को ही समझते हैं यही सदके फित्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप हदीस के जखीरे में देखेंगे तो गेहूं, जौ, खजूर और बाद रिवायतों में किशमिश का तस्करा था। हजरत अबू सैद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मुस्तफा के खाने रिवायत है उसमें किशमिश का तस्करा जबी। किशमिश तो बाद लोग मुरक्के में भी तब्दील करते हैं, जिन से होता है इसमें से वो सूखा अंगूर, मुरक्का भी उसी से मिलता जुलता उसको भी शामिल किया। खजूर, तर खजूर और सूखी खजूर को छुहारा कहते हैं, वो भी इसमें शामिल। याद रखें कि सिर्फ गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसके बारे में निश्चिता कहा गया और बाकी सबके बारे में सा कहा गया, और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में तो सब में सा कहा गया कि हम लोग सत्य पे तो निकाला करते थे खाने की चीजों से एक सा, और फवाकिया मतलब जैसे उसमें पनीर का भी तस्करा है, खजूर का भी तस्करा है, जौ का भी तस्करा है, किशमिश का भी है, उससे भी एकता निकाला करते थे। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है, यानी सबका सा निकाला किया। सा है क्या? सा उस जमाने का पैमाना है जिसकी आज के दौर में एक किलो 574 ग्राम और 640 मिलीग्राम बनता है। एक किलो 574 ग्राम और 640 मिलीग्राम बनता है, ये निश्चिता बनता है। और एक सा जो होगा वो 3 किलो 150 ग्राम होगा, 3 किलो 150 ग्राम। अब याद रखें गेहूं से सिर्फ निष्ठा है, बाकी जितनी चीजें हैं सबसे एक सा। गेहूं, आटा, सत्तू, ये तीन चीजों से, क्योंकि गेहूं की जिन की है सत्तू आटा उसी से निकलता है, निष्ठा उसमें है मोतबर। और बाकी जौ है, खजूर है, छुहारा है, किशमिश है, मुनक्का है, ये सारी चीजों से एक सा है, वही 3 किलो 150 ग्राम। हमारे यहाँ मशहूर हो चला है कि भाई गेहूं से कितना सच्चा फित्र है, या ये कहते हैं कि जो गेहूं खुद खाते वही खिलाने का सही था कि गेहूं जो खुद खाते थे उसी का उसी गेहूं से सच्चा फित्र है, लेकिन खजूर भी तो खाते थे, जो किशमिश कभी नहीं खाया आपने। जिस तरह से जकात के मामले में हमने बताया था कि सोने और चांदी का जो फर्क है इसको हम नहीं मिटा सकते कि भाई चांदी सस्ती होगी सोना महंगा हो गया, कहा 52.5 तोला कहा 7.5 तोला। इसी तरह से ये किशमिश और जौ या कह लीजिए गेहूं के मिकदार को हम तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन जमाने के एतबार से बढ़ा के दे सकते हैं। यानी गेहूं को छोड़ के, या कह लीजिए जो लोग इस हैसियत क्या है कि गेहूं से अपना सच्चा फित्र अदा करें वो गेहूं से करें, जिनकी हैसियत ऐसी है, लेकिन जिनकी हैसियत अल्लाह ताला ने ऊंची रखी है उनको खजूर से भी निकालना चाहिए, किशमिश से भी निकालना चाहिए, मुनक्का और फुहारे से भी निकालना चाहिए। बस कोई भी आ रहा है भाई यहाँ सच्चा फित्र कितना है वो रकम पूछते पड़ते हैं, भाई रकम तो घटती बढ़ती रहती है। याद रखने की सच्चे क्षेत्र में एतबार कंट्रोल रोड का नहीं, रेट का नहीं होगा, कंट्रोल रेट जो होता है उसका नहीं होगा, बाजारी भाव का होगा जो आम रेट है। ये भी याद रखें राशन का या और किसी का जो कंट्रोल रेट होता है वो भी एतबार नहीं होगा, बाजारी भाव होगा। खाने की बात रही तो खाने का कि अपना जो खुद खाते हैं वही खिलाएं, देखो कफारे यमीन में था कसम खाने में मातमून, जो अपने घर वालों को खिलाते हो वही जो है खाना फकीरों को खिलाओ। मुमकिन है फुकहा ने इससे सच्चे फित्र के बारे में भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन सिर्फ गेहूं के बारे में ही नहीं है और चीजें भी हैं, खजूर से भी निकाल। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बसरा आए तो वहां पे उन्होंने खुतबा दिया और यही बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म फरमाया है कि सदका फितर निकालो, गेहूं से निष्ठा, जौ से एकता, और ये हर एक पर वाजिब है, आजाद हो, गुलाम हो, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो। फिर उसके बाद उसी बसरा शहर में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए बाद में, तो उन्होंने जब देखा कि वहां गेहूं का रेट बहुत कम है और चीज़ों के मुकाबले में, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आप पर वसात फरमाई है और इस वसात की बुनियाद पर आप हर चीज का सदका फित्र एक साथ से निकाला करो, यानी गेहूं का भी एक साथ से निकालो क्योंकि गेहूं का रेट कम। आज के जमाने में भी जौ जौ गेहूं से महंगा है, कभी जौ से निकालने की कोशिश करें, یا کہیں اس میں کہ اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے نکالے. ہمارے یہاں یہ جو اردو اتنا لیپ کے دن لکھ کے دے دیتے کہ بھائی اتنا سبسکرائبر رہے, کیا معلوم ہے ریٹ کم جس دن آپ نکال رہے ہو زیادہ ریٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کا بڑھ بھی سکتا ہے کبھی گھٹ بھی سکتا ہے, یہ لکھنا غلط ہے. ان کو ٹیم یہ بتاؤ. اچھا یہاں یہ شافعی اور حنفی کا بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے مقدار کے اعتبار سے بھی اجناس کے اعتبار سے بھی. خیر شباب کے اجناس اپنی علماء سے تحقیق کر لیں کہ ان کو کیا دینا ہے کتنی مقدار میں دینا ہے, جو مسئلے بتائے جا رہے ہیں حنفی کے بتائے جا رہے ہیں, نہیں تو ان کے جائیں ان کے یہاں تو کون تبدیلی ہو. حنفی کے یہاں یہ اجازت ہے کہ چاہے یہی چیزیں دے دیں صدقہ فطر میں یا اس کی قیمت دے دیں, اور آج کا دور جب آپ کے پاس خود وہ چیز نہیں ہے قیمت دینا ہی بہتر ہے. جن کے یہاں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جیسے گیہوں جو یا دوسری چیزیں تو ان کو دینا بھی بہتر, کیونکہ ایک بار خریدنے جائیں گے خریدنے جانے کی ضرورت ہی نہیں, گھر پہ موجود ہے وہ دے دیتے. یہ رواج ہے دوسری جگہوں پہ جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے کاشت ہوتی ہے وہ لوگ وہی دے دیتے کہ وہ کاغذ دے دیتے, لیکن جن کو خریدنا ہے پھر واپس جو ہے فقیر کو دینا فقیر بھی لے جا کے بیچے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو قیمت دے دو اور وہ اپنی ضرورت جو چیزیں چاہتے ہیں اپنا خرید لیں گے, ان کو بھی دقت نہیں ہوگی اور دینے والے کو بھی دقت نہیں ہوگی. یاد رکھیں کہ گیہوں سے صرف گیہوں ستو آٹا یہ تین چیزوں سے جو نسبتا ہے جس کی مقدار 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام بنتی ہے, باقی چیزوں سے تو گئے فطر 3 کلو 150 گرام ہے, اس میں جو بھی شامل ہے جو کھجور کھوارا کشمش منقہ یہ چیزوں, اور یہ بھی ویسے بھی اگر دیکھا جائے روزے کا صدقہ آپ دے رہے ہیں, اور دونوں چیزیں یہاں پہ جمع ہو رہی ہیں, ایک تو اپنے روزے کا صدقہ ہے دوسرے فقیر کو اس کی عید کا بندوبست کرنا ہے. 50 روپے میں کیا اس کا عید کا بندوبست ہوگا, کم سے کم کھجور کا یا کشمش کا ایک آدمی کا صدقہ نکالو جس سے اس کی کم سے کم ایک جوڑے بچے کی تو بن جائے, وہ بھی آج کے دور میں مشکل ہوگا جہاں 1000 روپے چھوتے ہیں آسمان ایک کرتے پائجامے کے عید کے دن میں, اور یہ غم گزارے کا مہینہ تھا لیکن تاجر حضرات کے لیے شاید یہ حدیث نہیں ہے, ان کے لیے تو جتنا ہی آپ کھینچ لے جائیں کیونکہ ان کو اسی مہینے میں اور آخر اشرے میں تجارت کرنا ہے, باقی پورے سال بیٹھے رہنا ہے تو کھینچیں گے تو پورے سال کا خرچ کیسے نکالیں گے, ان کے لیے غم گزاری کا مہینہ ہے ہی نہیں. تو خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نکالیں, صرف ایک گیہوں کو پکڑ کے نہ رکھیں, جو اس حیثیت کا ہے گیہوں کا وہ گیہوں کی حیثیت کا نکال گیہوں سے نکالے گا, جو اس سے اوپر کی حیثیت کا ہے وہ اس سے نکالے گا. صدقہ فطر دینے کے بارے میں کب دیا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اگر کوئی رمضان سے پہلے دے دے, بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی جائے رمضان سے پہلے بھی عطا ہو جائے, لیکن رمضان میں دینا جس میں سب کا اتفاق ہے کہ رمضان میں دینے سے عطا ہو جائے گا دوبارہ نہیں دیں, واجب ہوتا ہے عید کی صبح کو, لیکن اس سے پہلے اگر دے دیں بلکہ عید کے لیے جانے سے پہلے پہلے دے دینا بہتر ہے. ایک روایت میں ہے کہ اگر عید سے پہلے دے دیا تو ایک مقبول صدقہ ہوگا, اور اگر عید کے بعد دے رہا ہے ان کا جانے کے بعد دے رہا واپس لوٹنے کے بعد تو ایک عام صدقے کی طرح ہوگا, یعنی یہ صدقہ بھی ایک درجہ رکھتا ہے. جو روزانہ ہم 10-5 روپے صدقہ کرتے رہتے ہیں اس کی فضیلت اور ہے, اور جو ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں اور عیدگاہ سے جانے سے پہلے نکالتے ہیں اس کی فضیلت اور بڑی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی عید کی نماز پڑھ لیا اس کے بعد بھی اس سے معاف نہیں ہے, یہ دینا پڑے گا اس کو, یعنی کہ بھائی اس سے پہلے ہی جانے کے لیے دینا تھا آپ عید تو عید پڑھ لیا کیا, نہیں نہیں معاف نہیں ہوگا, آپ کو اس کو دینا ہی ہے, اور بہتر یہی ہے کہ رمضان میں ہی ادا کر دیں, شروع رمضان میں ہی ادا کر دیں تاکہ اور بہتر ہو جائے گا. یہاں سے ایک نقطہ بہت باریک جو نکلتا ہے وہ زکوٰۃ کی رمضان میں ادائیگی کا بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے, جس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. صرف ایک فرد کو 70 فرد کا درجہ حاصل کرنے کے لیے ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, یہ صدقہ فطر کا وجوب بتلاتا ہے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے تعلق نہیں ہے, زکوٰۃ کا پورے سال سے تعلق ہے, پورے سال کپڑا ملیں گے रमजान में जब हमने उनको अपनी जकात दे दी है तो सदका फितर उनके लिए कोई मजा नहीं रखता। ये 50, 100, 200 रुपए के सदका फितर से उनका क्या होने वाला है जो वो हजारों रुपए के मालियत के मालिक बन बैठे, बल्कि निसाब के मालिक बन बैठे। ये बहुत बारीक नुकसान होता है, लोग इसको समझते नहीं। इसका नुकसान क्या होता है कि जिनको हम सदका फितर ले जाकर दे रहे हैं वो खुद निसाब के मालिक हो गए हैं, उनके ऊपर खुद सदका फितर वाजिब हो गया है। क्योंकि सदका फितर वाजिब होने के लिए साल भर गुजरना जरूरी नहीं है, ईद की सुबह तक भी अगर कोई माल का मालिक हो गया 52,500 की मिसाल का, तो उसके ऊपर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। तो हम सदका फितर पूजा की फकीर की देने के बजाय एक मालदार को दे रहे हैं। तो शरीयत के जो अरकान होते हैं उनसे तोड़ मरोड़ जब किया जाएगा, टकराव किया जाएगा, तो यही हाल होगा। बस हमारा एक वो चल रहा है कि हम अदा कर रहे हैं, मकसद मंशा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही तौर पे अदायगी हो रही है कि नहीं, ये हमारे पेशे नजर नहीं होता। ये बात हमने पहले भी कही थी कि सिर्फ रमजान के लिए जकात को मखसूस कर लेने से क्या क्या खराबियां आती हैं। ये एकदम बिल्कुल वजूद के, बल्कि जकात जो फर्ज हुई है रमजान के बाद फर्ज हुई है। पहले नमाजें फर्ज हुई है, ये तस्वीर भी सुन गए कि मेराज में जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मक्का में ही थे, वहीं से मेराज की, तो नमाजें फर्ज हुई 5 वक्त की। उसके बाद जब मदीना आए सन 2 हिजरी में तो रोजे रमजान के फर्ज हुई है, और उसी रमजान में ये जो है सदका फितर वाजिब हुआ ईद के लिए। फिर उसके बाद कब जो है, यानी रमजान और सदका फितर वाजिब होने के बाद में फिर जकात वाजिब हुई। उससे पहले जकात वाजिब नहीं थी, इस मतलब तरीके के एतबार से जो अभी शरीयत के पूरे कानून बताए गए उस कानून के एतबार से नहीं फर्ज। तो सदका फितर का वजूद इस बात की दलालत है कि रमजान में ही जकात को महसूस कर लेना ये मुनासिब नहीं, क्योंकि जब जकात हमने दे दिया तो फिर उनके फुकरा के लिए इसकी जरूरत तो बनती ही नहीं है। फिर वो खराबी आएगी कि हम अपना जो है सदका फितर फकीर को देने के बजाय शरीयत के बाद जो मालदार है उनको दे रहे हैं। सदका फितर के देने के बारे में ये भी समझ लें कि जिनको जकात दे सकते हैं या जो जकात के मुस्तहिक हैं वही सदका फितर के भी मुस्तहिक हैं, और जो निसाब का मालिक नहीं वही सदका फितर का मुस्तहिक है। एक आदमी का सदका फितर कई फकीरों को दे सकते हैं, लेकिन ये अमल अच्छा नहीं है। अब ये आपका गेहूं की मिसाल के तौर पर सदका फितर 40 रुपये निकला, आप 2-2, 4-4 रुपया करके 10-50 फकीरों को बांट रहे, कोई खूबी की बात नहीं। बल्कि कई आदमियों का सदका फितर एक आदमी को दे सकते हैं, हाँ, लेकिन वो निसाब का मालिक ना बन पाए उस सदका फितर। मिसाल में किसी ने बड़ी रकम निकाला सदका फितर की, उसका बड़ा खानदान है, या ये कह लीजिए इकट्ठा करके एक ही फकीर को दे रहा, तो निसाब का मालिक ना होने पाए कितनी मिसाल तक दे सकते हैं। एक आदमी के सदके से तो कई आदमियों पर तकसीम करने को मकरूह लिखा है, क्योंकि उसे क्या इनका समारोह करेगा। एक आदमी का 300 भी निकला, अब आप 10 आदमियों में बांट रहे, 20 आदमियों में बांट रहे, कोई मतलब नहीं। कल एक लफ्ज हमने कहा था कफारा, कफारा के माने होता मिटाने के। ये रोजे के बारे में कफारा बोला जाता है, रोजे के कफारे को सजा के तौर पर आयद किया जाता है। अभी लफ्ज आया फिदिया, फिदिया और कफारा में फर्क होता है, बात लोग इसको समझते नहीं। फिदिया कहते हैं जो माजूर बीमार किसी हालत में रोजा नहीं रख सका, वो जो है पूरे 30-29 दिन का फिदिया अदा करेगा, और फिदिये की मिकदार वही बतलाएगी जो सदका फितर की है। और कफारा जो होता है, एक आदमी सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, रोजा रखते हुए था, उसने रोजा तोड़ दिया, तो अब उसको जो है कफारा अदा करना है। फिदिया और कफारे का फर्क समझे बालों की, फिदिये को कफारे को, कफारे को फिदिये में जो है गड़बड़ कर देते हैं। और सदके फित्र के बारे में जो हमने कफारे का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो सदके फित्र में आदमी जो रोजा रखा, रोजे रखने की हालत में उसने कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां कर दी होगी, उन कोताहियों को मिटाने के लिए सदके फित्र है। ये लफ्ज है कफारा, मिटाने के लिए, रोजे से अलग है इसका ताल्लुक। ये तो रोजा रखने वाले के लिए, और वो रोजा न रखने रखकर तोड़ देने वाले के लिए। तो आप सदका फितर अदा करें, اور اس ترتیب سے ادا کرے، اس میں کچھ تبدیلی لائے تاکہ شریعت کے صحیح مسائل کے جانکاری کے اعتبار سے اور فقراء کے پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے سچے کے لوگ ادا کریں۔ یہ نہیں کہ پوچھتے پھریں کہ گیہوں کا سب کیسے بھی، ہم تو گیہوں کھاتے ہیں، یہ اتنے ریٹ والا کھجور بھی کھاتے ہو تو کھجور کے ریٹ سے نکالو، کشمش کھاتے ہیں کشمش کے ریٹ سے نکالیں۔ جب کسی بات سے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور